नीति वचन अध्याय 11। आइए हम नीति वचन अध्याय 11 खोले। अब हम नीति वचन में छोटे छोटे या संक्षिप्त नीति वचनों को देख रहे हैं। हर एक नीति वचन अलग है, अपने आप में पूर्ण है और दूसरे वचन से भिन्न है, इसलिए बहुत थोड़ी टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि हर एक पद की सोच अपने आप में संपूर्ण है और पद स्वयं में पूरी व्याख्या करता है। इन वचनों की व्याख्या करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर पद सब कुछ खुद ही समझा देता है। इस प्रकार संक्षेप में कही गई बातों में से हमें ज्ञान की खोज करनी होती है। हम लोग इब्रानी कविता के उस भाग में से पढ़ रहे हैं जो विपरीत विचारों की तुलना है, और विशेषकर इन नीति वचनों में धर्मी और अधर्मी की तुलना की गई है। आपको इन छोटे छोटे सच्चाई से भरे उपदेशों में विपरीत विचारों की तुलना देखने को मिलेगी। नीति वचन अध्याय 11 पद 1। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा कंप्यूटर तराजू के युग से पहले लोग सारा व्यापार तराजू से किया करते थे। उनके पास छोटे बाट होते थे जिससे वे तराजू के एक पलड़े में रखते थे और दूसरे में सामान तब तक डालते जाते थे जब तक कि तराजू की डंडी सीधी न हो जाए। लेकिन उन चलाक लोगों के पास दो तरह के बटकेरे बाट होते थे। एक तरह के बाट वे होते थे जिससे वे माल खरीदते थे, और दूसरी तरह के बाट वे होते थे जिससे वे माल बेचते थे, अर्थात गलत तौल। इससे प्रभु घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है हम खराई से व्यापार करें, ईमानदारी से व्यापार करें। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापार में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप सीधी चाल चले और सीधाई और ईमानदारी से लोगों के साथ व्यवहार करें। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, अतः वो उन विभिन्नता वाले बाटों के बारे में कह रहा है जिसे लोग अधिकतर प्रयोग करते थे। एक बार मैंने पढ़ा था कि सालों पहले जब लोग इंग्लैंड में तराजू का प्रयोग करते थे, उस एक बेकरी वाले ने किसान पर मुकदमा कर दिया। बेकरी वाले ने कहा कि जब उसने किसान से मक्खन खरीदना आरंभ किया था, तब वो पूरा आधा किलो मक्खन देता था, लेकिन धीरे धीरे किसान कम मक्खन देने लगा और अब वो आधा किलो के स्थान पर चौथाई भाग कम देता है और पैसे पूरे लेता है। इसलिए बेकरी वाले ने न्यायालय में उस पर मुकदमा दायर कर दिया। किसान ने अपने बचाव में न्यायाधीश से कहा, महोदय, मेरे पास एक ही तराजू है जिसे मैं तौलता हूं। किसान ने आगे कहा, मैं सदा बेकरी वाले की आधा किलो की रोटी तराजू में एक तरफ रखता हूं और दूसरी तरफ मक्खन रखता हूं। इस तरह आधा किलो मक्खन मैं तौल कर दे देता हूं। ऐसे ही गैस पंप पर गैस नापने में किया जाता है। परमेश्वर इस तरह के छल से घृणा करता है। ये परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने लेन देन में सीधे और ईमानदार हो। वो नहीं चाहता कि आप बेईमान, चतुर और लोगों को ठगने वाले हो। वो पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है। परमेश्वर व्यापार में ईमानदारी से प्रसन्न होता है। नीति वचन अध्याय 11 पद 2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हम जैसे जैसे नीति वचन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि सुलेमान के पास अभिमान के बारे में कहने को बहुत कुछ है। आप अनुक्रमणिका सूची में ढूंढे कि वहां घमंड पर कितने पद नीति वचन के हैं। निश्चय ही परमेश्वर इसका तिरस्कार करता है। ये सच है कि अभिमानी मनुष्य अंधा होता है, उसने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंधों में रहकर अभिमानी बना रहे। यशया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, यशया 6:1-5, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। 5, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर को देखने पर वो स्वयं के सच को देखता है। एक अभिमानी मनुष्य ने अपने अंदर सच्चाई को कभी नहीं देखा है, जिसका अर्थ है उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इसलिए अभिमान के बारे में बहुत कहा गया है। परमेश्वर कैसे अभिमान से घृणा करता है, परमेश्वर कैसे एक अभिमानी व्यवहार से घृणा करता है। मैं दूसरों से उत्तम हूं, मैं बहुत अच्छा हूं आदि सोचना अभिमान होता है, और ये सोचना मैं बहुत व्यस्त हूं कि उसकी आवश्यकताओं को देखूं। परमेश्वर इस प्रकार के व्यवहार से घृणा करता है। नम्रता का व्यवहार परमेश्वर को सम्मानित करता है। अभिमान के साथ शर्मिंदगी होती है, परमेश्वर उसको शर्मिंदा करेगा। इस अध्याय के बाद 16 तक हमें अभिमान के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभिमान गिरने से पहले आता है, लेकिन नम्रता, अभिमान और दीनता प्रायः विरोधाभास में होते हैं। नीति वचन 11:3, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। यहां भी विपरीत विचार है, एक खराई से चलता और अगुवाई पाता है, दूसरा विश्वासघात करता है और विनाश होता है। नीति वचन 11:4, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। परमेश्वर के आने वाले न्याय के दिन मनुष्य को धन से कोई लाभ न होगा। आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। मती 16:26, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आप देखेंगे कोप के दिन धन का कोई मूल्य न रह जाएगा। जब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा, आपका धन जो आपने कमाया है उसका आपके लिए कोई मूल्य न रह जाएगा। नीति वचन 11:4 में आगे लिखा है, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर के कोप के दिन धन व्यर्थ सिद्ध होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि पूरे दिन की कमाई में गेहूं का एक नाप मिलेगा, लगभग 461 ग्राम गेहूं पूरे दिन की कमाई होगा। वो परमेश्वर के कोप का दिन होगा। नीति वचन 11:5, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। यहां धर्मी और दुष्ट की तुलना की गई है। नीति वचन 11:6, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। दुष्ट लोग अपने आप ही विश्वासघात और दुष्टता में फंसेंगे। नीति वचन 11:7, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। दुष्ट की मृत्यु पर उसकी आशा समाप्त हो जाती है। उसकी आशा तब तक ही है जब तक वो जीवित है, परंतु जब वो मरता है उसकी आशा समाप्त हो जाती है। यूहन्ना 11 अध्याय 21 पद, यीशु से मार्था ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आगे पद 23 से 26 तक में, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मुझे यीशु मसीह की ये बात बहुत अच्छी लगती है। यीशु मसीह लोगों से सीधी बात करता है। ये उसका एक अविश्वसनीय एवं परिवर्तनकारी कथन है, ऐसा परिवर्तनकारी जैसे मैंने ना पढ़ा ना सुना कि इसराइल में किसी ने कहा हो। उसने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? इस प्रकार आपके पास हां या नहीं के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर नहीं होता है। ओह, परंतु यहां तो इससे बढ़कर भी कुछ बात है। आपके पास आशा है या आशा नहीं है? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके पास कोई आशा नहीं है। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा समाप्त हो जाती है। ये उसका अंत है, उसके लिए कोई आशा नहीं, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए पत्रस के शब्द है, पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। नीति वचन अध्याय 11 पद 8, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। परमेश्वर धर्मी को छुड़ा लेता है परंतु दुष्ट गड्ढे में गिरता है। नीति वचन अध्याय 11 पद 9, भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। जीभ ये नष्ट होने के लिए क्या कर सकती है? कितने लोग बकवास करके और झूठ बोलकर नाश हो गए। भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। देखिए यहां भी विरोधी विचार है। नीति वचन अध्याय 11 पद 9 और 10, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। यहां फिर से धर्मी और अधर्मी में तुलना की गई है। जब धर्मी का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, जब दुष्ट नाश होते हैं तब जय जयकार होता है। जब धर्मी का कल्याण होता है और सब कुशल होता है सब लोग प्रसन्न होते हैं, जब दुष्ट नाश होता है सब जय जयकार करते हैं। नीति वचन अध्याय 11 पद 11 से लेकर 13 तक, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्ध है परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। चतुराई करने वाला मनुष्य जो कुछ बुराई वो किसी के बारे में जानता है वो सब लोगों को बता देगा, लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। नीति वचन अध्याय 11 पद 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। मैंने भी अक्सर कहा है, सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आज बहुत से लोगों ने परामर्शदाता की दुकान खोल रखी है। वे आकर कहते हैं, मैंने इस महाअनुभव से बात की, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। ये लोग वास्तव में सम्मति देने के लिए नहीं, परंतु स्वीकार किए जाने के लिए किसी को ढूंढते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने उनकी बातें नहीं मानी, इसलिए वे आशा से ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो कहीं कोई हो जो उनसे सहमत हो जाए। वे लोग स्वीकारे जाने की आशा में हैं, न कि सम्मति या मार्गदर्शन के लिए किसी की खोज कर रहे हैं। ये लोग दुकान चलाते हैं जब तक उन्हें कोई ऐसा ना मिल जाए जो कहे, ओ बहुत अच्छा, ये ठीक है, आगे बढ़ो और ऐसा ही करो, हाँ ये कमाल का है। वे सच में मार्गदर्शन करना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि उन्हें मान्यता मिले कि जो कुछ वे कर रहे हैं वही अच्छा है और वही सही काम है। इसलिए सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। आप जितना आगे जाओगे उतना अधिक भिन्नता पाओगे और आपको क्या करना है नहीं जान पाओगे। नीति वचन अध्याय 11 पद 15, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वो बड़ा दुख उठाता है। यदि आप किसी के बारे में कहते हैं, ओह ये एक अच्छा व्यक्ति है, जबकि आप उस मनुष्य को जानते ही नहीं, आप अवश्य फंसेंगे और दुख उठाएंगे। नीति वचन अध्याय 11 पद 15 में आगे लिखा है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता वो निडर रहता है। ये शब्दों का खेल है। यदि आप उत्तरदायित्व से घृणा करते हैं या अपरिचित व्यक्ति की जमानत नहीं लेते हैं और जमानत लेने से घृणा करते हैं तो बचे रहेंगे, लेकिन यदि आपने किसी अजनबी की जमानत ली है तो आप अवश्य दुख उठाओगे। नीति वचन अध्याय 11 पद 16, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है, अति उत्तम। नीति वचन अध्याय 11 पद 17 से लेकर 19 तक, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वो अपनी देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वो मृत्यु का कौर हो जाता है। अतः धार्मिकता और जीवन की तुलना अधर्म और मृत्यु से की गई है। नीति वचन अध्याय 11 पद 20, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। विपरीत विचारों के मेल का एक उत्तम प्रदर्शन। नीति वचन अध्याय 11 पद 21, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, ये शक्ति और सुरक्षा है। नीति वचन अध्याय 11 पद 21 में आगे लिखा है, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आगे वाला पद एक सजीव दृश्य के जैसा है। नीति वचन अध्याय 11 पद 22, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थुतुन में सोने की नत पहने हुए सुअर के समान है। एक सुंदर स्त्री जिसके पास विवेक नहीं है उसके पास समझ भी नहीं है। सोने का आभूषण अच्छा होता है, लेकिन सुअर की तूथुन उसका स्थान नहीं है। एक अच्छी स्त्री, सुंदर स्त्री, जिसके पास विवेक नहीं है, वो बुद्धिमान भी नहीं है। नीति वचन अध्याय 11 पद 23। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। देखिए फिर से धर्मी और अधर्मी की तुलना। नीति वचन अध्याय 11 पद 23 में आगे लिखा है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। नीति वचन अध्याय 11 पद 24 में एक रोचक आत्मिक नियम है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। ये एक आत्मिक नियम है। इस नियम के विषय लूका, पौलुस और मरकुस क्या कहते हैं? लूका 6:38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और मरकुस 4:24, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। अतः ये निश्चय ही एक आत्मिक नियम है। यहां ये भिन्न रूपों में कहा गया है, लेकिन ये आत्मिक सच्चाई, जो उद्धारता से दान देता वो और धनवान बनता है। वास्तव में दान देने से आपके धन में वृद्धि होती है। जो कंजूसी से देता वो दरिद्र बनता है। नीति वचन 11:25-30। उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना रक्त छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वो औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई की खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होता, और मूड बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। जो आत्माओं को जीतते हैं वे बुद्धिमान हैं, और उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। दानियल की पुस्तक में लिखा है, दानियल 12:3, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर चाहता है हम यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीते। जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। एक बुद्धिमानी का कार्य जो हम कर सकते हैं वो है यीशु मसीह के लिए दूसरों को जीतना। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन अध्याय 11 पद 31। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा।